अध्याय नौ। जापान में सैन्यवाद, मिलिटेरिज्म इन जापान। पृष्ठ संख्या 122। सैन्यवाद का अभिप्राय एक ऐसी विचारधारा और राजनीतिक गतिविधि की प्रक्रिया से है जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, संस्कृति एवं राजनीति को सैन्य मूल्यों के अधीन करना है। इट इज एन आइडियोलॉजी एंड कोर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन प्राइमरीली स्ट्राइविंग टू इनसबॉर्डिनेट पॉलिटिक्स कल्चर एंड वेरियस फैसेट्स ऑफ सोशल लाइफ टू मिलिट्री वैल्यू। ऐसे वातावरण में युद्ध और उसकी समग्र तैयारी इतने अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि बाकी सब कुछ उन्हीं के चारों ओर घूमने लगता है। जापानी सैन्यवाद गनकोकु शुगी की उत्पत्ति की रूपरेखा आंतरिक और बाहरी कारणों के एक जटिल मिश्रण से ही व्यक्त की जा सकती है। 1918 और 1932 के बीच जापान में अधिकतर समय दलीय सरकारें थीं। इस काल में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडलों के अधिकतर सदस्य प्रतिनिधि सभा के बहुमतीय दल से संबंधित होते थे। हालांकि तब तक यह एक आदर्श संवैधानिक प्रणाली के रूप में स्थित नहीं हो पाई थी। जापानी उदारवादियों से काफी आशा की जा रही थी कि वे जापान की कायापलट कर उसे न केवल एक लोकतांत्रिक राज्य बना देंगे बल्कि एक शांति प्रिय देश भी। लेकिन यह सपना उस समय एक दुखद घटना में बदल गया जब वह पहले निरंकुशवाद तथा विस्तारवाद से ग्रस्त हो गया और फिर भयंकर युद्ध में संलिप्त होकर उसे विनाशकारी पराजय का सामना करना पड़ा। निस्संदेह उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद को जापान में कुराई जानीमा या अंधेरी घाटी के नाम से जाना जाता है। जापान के आधुनिक इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लगभग सभी मेजी नेता भूतपूर्व समुराय थे। चूंकि उन सबका प्रशिक्षण योद्धा परंपरा में हुआ था, उन्होंने जहां कहीं भी वाणिज्य, सेना या लोक अधिकारी के रूप में कार्य किया, जापानी समस्याओं और उनके समाधानों को सैन्य योद्धा विशिष्ट वर्ग की नजरों से देखा। आगे चलकर भी मेजी युग के बाद के अधिकतर नेता या तो समुराय मूल्यों से बहुत प्रभावित थे या फिर समुराय परंपरा से जुड़े हुए परिवारों से संबंधित थे। इस प्रकार जापानी नेतागण के भारी बहुमत ने जापान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को सैनिक विचारधारा के आधार पर ही पूरा करने की कोशिश की। परिणामस्वरूप तोकुगावा काल के पश्चात जितनी भी उलझने जापान के सामने आई उनका समाधान या तो सैन्य दृष्टि से किया गया या करने की कोशिश की गई। सच तो यह है कि औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण का उद्देश्य और उसे गति प्रदान करने वाली आत्मा ही योद्धा संस्कृति की दिखाई पड़ती है। इसी ने ही काफी हद तक पहले तो सेना की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और फिर बढ़ती हुई शक्ति के लिए रास्ता खोलने का कार्य किया। कॉमोडोर पेरी के आगमन के दिन से ही जापान पाश्चात्य शक्तियों की विस्तारवादी नीतियों से खतरा महसूस कर रहा था। इस आशंका का प्रत्यक्ष बोध 1930 के दशक में और भी बढ़ गया। जापानी नेताओं के सामने चीन के साथ पाश्चात्य शक्तियों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक महत्वपूर्ण उदाहरण था। इसलिए लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने की बजाय उनका अधिक ध्यान उन नीतियों की ओर गया जिनके द्वारा राष्ट्रीय धन और शक्ति में वृद्धि हुई। इसी दौरान 1894 से 95 में चीन जापान का युद्ध हुआ जिसमें विजय पाने के बाद जापान स्वयं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां अपना बैठा और उपनिवेश प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गया। फिर 1904 से 5 में रूस के साथ हुए युद्ध के बाद तो जापान की सशस्त्र सेनाओं और उनके समर्थकों ने विनम्रता और संकोच को ही त्याग दिया, जैसा कि ईओ रायशओअर ने कहा है। जापानी नेताओं ने उत्साहपूर्वक यूरोपीय साम्राज्यवाद को अपनाया और जल्दी ही उपनिवेश प्राप्त करने के संकल्प में पश्चिमी साम्राज्यवादियों को पीछे छोड़ दिया। द जापानीज लीडर्स इंथोजेटिकली एम्बेरस्ड द इम्पेरियलिज्म ऑफ यूरोप एंड सुन आउट स्ट्रिपेड द वेस्टर्न इम्पेरियलिस्ट इन दियर डिटर्मिनेशन टू विन कॉलोनीज। स्थल और नौसेनाओं ने अपनी विजयों के साथ साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण और भी बड़े जंगी बेड़े तथा सेनाओं की मांग पूरी करनी आरंभ कर दी, जिससे न केवल अपने देश के विभिन्न द्वीपों की रक्षा की जा सके, बल्कि हाल ही में महाद्वीप पर प्राप्त की गई अपनी स्थिति को भी मजबूत किया जा सके। मेजी और तैशो कालीन जापान में कम से कम 5 विभिन्न शक्ति गुट, सशस्त्र सेनाएं, अधिकारी वर्ग, राजनैतिक दल, गैनरो और जायबात्सु थे। स्थल और नौसेना के उच्च अधिकारी सम्राट से सीधा संबंध स्थापित कर सकते थे और उन्हें बेहद प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मंत्रिमंडलों की संरचना पर भी उनका काफी नियंत्रण था। अधिकारी वर्ग के ऊपरी कर्मचारी सरकारी कार्य प्रणाली का संचालन करने के साथ साथ सलाहकार परिषद, प्रिवी काउंसिल जैसी अचयनात्मक नॉन इलेक्टिव सरकारी संस्थाओं पर भी अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। राजनीतिक दलों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रखे थे। दलगत राजनीतिज्ञ, पार्टी पॉलिटिशियंस अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा संविधान द्वारा निचले सदन, लोअर हाउस को दिए गए अधिकारों से प्राप्त करते थे। गणरों का सम्राट से सीधा संपर्क था और उनके विचारों को अक्सर मान लिया जाता था। आधुनिकीकरण की श्रृंखला में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्हें समाज में एक विशेष स्थान और मान्यता प्राप्त थी, जिस कारण से उन्हें सेना और सरकार दोनों के ऊपर माना जाता था। जायबात्सु अपने धन के कारण काफी प्रभावी बन गए थे। 1922 तक अधिकतर जायबात्सु या तो मर चुके थे या फिर सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद राजनीतिक दलों और अधिकारी वर्ग गठबंधन, जिसे जायबात्सु ने अपने धन के बल पर और भी मजबूत बना दिया, मुख्य शक्ति केंद्र बन गया। लेकिन यह गठबंधन अधिक देर तक नहीं चल पाया। भारी आर्थिक संकट के समय में भी, जब कारखाना मजदूरों में बेरोजगारी फैल चुकी थी और कृषकों की दशा दयनीय हो गई थी, तब भी जयबासु ने मुनाफा कमाने के हर अवसर का पूरा फायदा उठाया। सोदोमेई ने 1924 में एक अधिवेशन में जयबासु की ऐसी प्रवृत्तियों को देखकर चेतावनी भी दी थी कि हमारे देश का पूंजीवाद, जो उदारवाद की अवस्था से नहीं गुजरा, सैन्यवादी बनता जा रहा है और उसमें से एक तंत्रवाद की गंध आती है। कैपिटलिज्म इन आवर कंट्री विदाउट हैविंग पास्ड थ्रू द स्टेज ऑफ लिबरलिज्म इज बिकमिंग मिलिटरिस्टिक एंड इज एंडोवेड विद द फ्लेवर ऑफ ऑटोक्रेसी। राजनीतिक दलों ने जयबात्सु के साथ मिलकर भ्रष्टाचारी कार्यों में भाग लिया और यह क्रिया 1930 के दशक में निरंतर चलती रही। जनमत दिन प्रतिदिन दोनों जयबात्सु और दल राजनीतिज्ञों के विरुद्ध होता चला गया। अनेकों बार तरह तरह के अवैध कार्य प्रकाश में आने लगे। उन्होंने राजनीतिक दलों और दलीय सरकार प्रणाली को इतनी क्षति पहुंचा दी कि उसे अब पूरा नहीं किया जा सकता था। अब उत्तरदायी दलीय सरकार की संस्था पर आम जनता का भरोसा यदि पूर्ण रूप से नहीं उठा था, तो कम से कम बुरी तरह से डगमगा तो गया ही था। विभिन्न दलीय सरकारों द्वारा अपनाई अधिकतर नीतियां या तो अलोकप्रिय थी या फिर असामयिक। उदाहरणतया 1930 में प्रधानमंत्री हामागुची के मंत्रिमंडल को तब वित्तीय विध्वंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जब उसकी वित्तीय उन्मूलन नीतियों के कारण जापानी माल विदेशी मंडियों में बिकना बंद हो गया। इस प्रकार की घटनाओं ने बड़ी मात्रा में सेना और रूढ़िवादी शक्तियों के लिए लोकतंत्र और संसद विरोधी भावनाओं को पैदा करने में ईंधन का कार्य किया। उदारवाद और दलीय सरकारों से आम निराशा ने सैन्यवाद के जन्म का एक मुख्य कार्य किया। पृष्ठ संख्या 125, शायद 1894 से 95 के चीन जापान के युद्ध के बाद का दशक जापान के आधुनिक शक्ति बनने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काल था। युद्ध के बाद 5 नए सैन्य दल खड़े किए गए और सेना को इस प्रकार से पुनर्गठित किया गया कि घुड़सवारी, कैवेलरी, तोपखाना, आर्टिलरी और अभियंता, इंजीनियर नामक सैन्य दलों को स्वतंत्र रूप से पैदल सैन्य दलों, इन्फेंट्री डिविजन्स से जोड़ दिया गया। चीन जापान के युद्ध की पूर्व संध्या पर सैन्य दलों, जनरलों, अफसरों और प्रशिक्षित सैनिकों की संख्या क्रमशः 7,36,00,000, 13,205 और 65,241 थी, जो रूस जापान के युद्ध 1904 से 5 से पहले बढ़कर 13,94,20,345 और 1,32,348 हो गई। इसी दौरान जापान की नौसैनिक शक्ति भी बड़े प्रभावशाली ढंग से बढ़ी। उदाहरणतया विध्वंसक जहाजों, डिस्ट्रॉयर्स, जंगी जहाजों, बैटलशिप्स, बख्तरबंद तीव्र गति जहाजों, आर्मर्ड क्रूजर्स, तीव्र गति जहाजों तथा पनडुब्बियों, टॉरपेडोज की संख्या 0, 1, 4, 7 और 24 से बढ़कर क्रमशः 19, 6, 18, 20 और 85 हो गई। चीन और रूस से सफलतापूर्वक युद्ध तथा आंग्ल जापानी मैत्री, एंग्लो जापानीज अलायंस 1902 कायम करने के बाद जापान को विश्व शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। अपना विश्व शक्ति का दर्जा बनाए रखने तथा अपने साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सरकारी एकाधिकार में कई कारखाने कायम करने का कार्यक्रम बनाया गया और उसके लिए पैसा जुटाने के लिए भूमि कर लगाया गया। बाद में इन कारखानों को मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो तथा यासुदा जैसे जायबासुओं के हाथों में बेच दिया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एकाधिकार कायम करके सुदूर पूर्व में आधुनिक सैन्य विस्तार को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया तथा विश्व सैन्य शक्ति के रूप में जापान का पालन पोषण किया। जिस समय एक ओर उदारवादी संस्थाएं नाकामी और असफलता के अंधकार में डूबती जा रही थी, तो दूसरी ओर रूढ़िवादी और सैन्यवादी शक्तियां अपने षड्यंत्रों में बड़े सुविधाजनक ढंग से सफल हो रही थी। सशस्त्र सेनाओं में सैन्यवादियों ने सेना के स्वरूप को बदलकर उसे एक संगठित शक्ति गुट बना दिया। इस गुट ने अधिकारी वर्ग के अनेक सदस्यों तथा राजनीतिज्ञों को जायबाजू तथा राजनीतिक दलों से हटाकर अपनी ओर कर लिया। नई विचारधारा की संरचना ने सेना को एक ऐसी शक्ति और दिशा प्रदान की जो शक्ति संघर्ष में उसके विरोधियों के पास नहीं थी। 1930 के बाद स्थल और नौसेना के अफसरों ने कई प्रकार से इस तरह की घटनाओं में भाग लिया जिनकी कोई विशेष कार्यक्रम या रूपरेखा ही नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया था कि अब सेना बिना किसी रुकावट के मनमानी करने लगी थी। 18 सितंबर 1931 को शनयांग घटना सेना के ऐसे व्यवहार का एक जीता जागता उदाहरण है। सेना ने जापानी सरकार को बिना बताए तथा झूठ बहाने के आधार पर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। हालांकि टोक्यो सरकार ने अपनी सेना के उग्रवादियों के प्रत्येक विदेशी कार्य को प्रतिष्ठित नहीं माना था, लेकिन फिर भी शनयांग घटना से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि अब सेना को अनुशासित नहीं किया जा सकता था। अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी सिटमसन की शब्दों में जापानी विदेश मंत्रालय अब जापान की विदेश नीति निर्धारित नहीं कर रहा था। जापानीज फॉरेन मिनिस्ट्री वाज नॉट एनी लॉन्गर फॉर्मुलेटिंग जापान्स फॉरेन पॉलिसी। इस प्रकार की कई परिस्थितियों में जापानी सरकार केवल तदर्थ स्पष्टीकरण ही दे पाई। इस घटना से सेना ने न केवल वैभव प्राप्त किया, बल्कि मंचूरिया में सेना द्वारा संचालित राज्य ने सैनिक शासन, मिलिट्री रूल और नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में भी काम किया, जैसी कि जापान की परंपराएं भी थी। सेना के लिए अब लोगों को इस बात के लिए राजी करना तनिक भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि समाज उनका आभारी था। इसलिए जब जापानी सेना विजय प्राप्त कर रही थी, तब वह आसानी से जनता में भारी जोश पैदा करके अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सकती। मेजी काल में शिंतोवाद का पुनर्जागरण भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। मेजी नेताओं ने शिंतोवाद को पुनर्जागृत करके तथा राजकीय समर्थन देकर अपने नीतियों के पक्ष में जनता से मनोवैज्ञानिक तौर पर सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। शिंतोवाद को देशभक्ति से जोड़ दिया गया और चल रहे राष्ट्रवादी दौर को इस तथ्य ने एक प्रकार का धार्मिक रूप दे दिया। सरकारी शिंतोवाद को एक विभाग के अंतर्गत ले लिया गया और शिंतो रीति रिवाजों को स्कूलों के छात्रों की शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया गया। इस प्रकार, जैसा कि H.H. सुनु ने व्यक्त किया है, मेजी पुनः स्थापन ने शिंतोवाद का विकास राज्य के एक औजार के रूप में प्रयोग किया, जिसने ऐसी अंधाधुंध निष्ठा और श्रद्धा पैदा की जिसकी जापानी नेताओं की जरूरत थी। द मेजी रेस्टोरेशन डेवलप्ड शिंतोइज्म एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ब्लाइंड लॉयल्टी एंड डिवोशन जापानीज लीडर्स रिक्वायर्ड। जापानी राष्ट्रवाद सैनिकों और किसानों के कृषि प्रधान देश की देन था, जैसा कि R.A. स्कैल्पिनो ने कहा है। कृषक राष्ट्रवाद एग्रेरियन नेशनलिज्म से लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए समर्थन की उम्मीद रखना एक भूल थी। ऐसा राष्ट्रवाद व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा वर्गीय निष्ठाओं पर आधारित था। ऐसा राष्ट्रवाद शायद एक औद्योगिक समाज में अपनाया तो जा सकता था, लेकिन यह सही रूप में गांवों और सेना में ही पनप सकता था। इसका महत्वपूर्ण नारा था, संपन्न देश, शक्तिशाली सेना, फुकोकू क्यो हेई। कृषक सैनिक झंडे के नीचे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का उस प्रकार का मिलाप नहीं हो पाया जैसा कि पश्चिम में संभव हो गया था। बाद के युवा समुराय अपने पूर्वजों, जो मेजी काल में कुलीन वर्ग के सदस्य थे, की तुलना में समझते थे कि उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आंदोलन हेतु जन आधार प्राप्त करना होगा। यह वह संदर्भ है जिसके परिप्रेक्ष्य में कृषकों, जिनकी आर्थिक मजबूरियों का वह अक्सर फायदा उठाते या चर्चा करते थे, का महत्व देखा जा सकता है। अनिवार्य भारतीय कानून के तहत तैयार की गई सेना, कंस्क्रिप्ट आर्मी, नगरों की बजाय ग्रामीण मनोवृत्ति अधिक व्यक्त करती थी। साथ ही आधे से अधिक युवा अफसर भी गांव से आए थे, जिनकी सेना में मौजूदगी नगरों के प्रति गांवों की घृणा प्रदर्शित करती थी। उनके मस्तिष्क में यह बात उतर चुकी थी कि पूंजीवादियों को मार देना चाहिए, क्योंकि जायबासू ही आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार थे, और सेना जो देश की मार्गदर्शक है, उसे कृषकों की रक्षा करनी चाहिए। जापानी राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ब्रितानिया और अमेरिका की तरह मध्य वर्ग के आर्थिक गुणों का न उभरना था। जापानी राष्ट्रवाद में व्यापारी के स्थान पर योद्धा को ही केंद्र बिंदु की मान्यता प्राप्त हुई। एक जैविक राज्य, ऑर्गेनिक एस्टेट की संकल्पना में भी जापान राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य, डेमोक्रेटिक सेकुलर एस्टेट से भिन्न रूप में देखा गया। यह एक ऐसी वैचारिक पद्धति पर आधारित था जिसे बाकी विचारधारक पद्धतियों से बचाकर रखना जरूरी समझा गया। राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य कोदो कोदो यानी साम्राज्य प्रणाली इंपेरियल सिस्टम में संरक्षित किए गए थे, जिनका सीधा निष्कर्ष था विश्व में जापानी नेतृत्व। जिस प्रकार जापानी नेता यह तय करते थे कि सारे राष्ट्र के लिए क्या ठीक है, उसी प्रकार जापान सारे विश्व की भलाई का फैसला करेगा। इस आंदोलन का आध्यात्मिक स्रोत वह परंपरागत धारणा थी जिसके द्वारा राष्ट्र के प्रति व्यक्ति की निष्ठा और अटल भक्ति की याचना की गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रतिक्रियावादी स्वभाव एक ऐसे विवेकहीन उग्र राष्ट्रवाद तथा अंध देशभक्ति से उत्पन्न हुआ जिसमें जरूरत पड़ने पर जीवन दान की अक्सर मांग की गई। कुछ हद तक यह उस सामंतवाद की देन था जो 20वीं शताब्दी के आधुनिकतावाद के मध्य जीवित रहा और जिसका प्रयोग कलह और असमानता से भरपूर जापानी समाज को पुनः संगठित करने के लिए किया गया।